الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. تو دیکھتے ہیں آج کا لیسن، سورة البقرة آیت نمبر 124 سے 131 تک. آج جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پیریڈ جب وہ مکہ میں آئے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام یوں تو عراق سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں کی ہی ان کی پیدائش اور وہیں پہ وہ پلے بڑے تھے، مگر اس کے بعد آپ جانتے ہیں وہ فلسطین موو ہو گئے جب ان کو نکال دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ مکہ سے ان کی کیا نسبت تھی کہ جب انہوں نے بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو اس گھر پہ یہاں پہ اس زمین پہ چھوڑ دیا تھا. تو وہ وقت کی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر، اور ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعائیں ہیں جو انہوں نے اس وقت میں کی تھیں، وہ بھی آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے بھی دعا کے آداب، کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، کن چیزوں کو مانگنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر ہم آج کے لیسن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا وہ کس وجہ سے دیا، اور ان کو چونکہ تمام مذاہب مانتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے وہ عیسائی ہیں، آج بھی ابو الانبیاء اور تمام نبیوں کے باپ ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو سب ہی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے. جیسے آج مسلمانوں کے اندر اتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں کہ ہر کوئی اپنے فرقے پہ بڑا اتنا ناز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید اسی فرقہ سے تھے. تو وہ بھی اپنے، حالانکہ بعد میں یہ لوگ تو آئے، چاہے یہودی ہیں چاہے عیسائی ہیں، بہت بعد کی پیداوار ہیں، لیکن ہر ایک اپنے آپ کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے میں فخر محسوس کرتا تھا. تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھوڑی تھے جیسے تم سمجھتے ہو، جو تم کام کر رہے ہو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا ہی نہیں. وہ کیسے تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، دیکھو تو صحیح. تم اپنے آپ کو جوڑتے تو ہو ان کے ساتھ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو دیکھو کہ کیا تھا، اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. تو ان کی زندگی کی ایک جھلک ہمیں دکھائی گئی ہے یہاں پر، اور خاص طور پہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو اس گھر کا متولی سمجھتے تھے، کعبۃ اللہ کا. تو ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پر آئے تھے اور انہوں نے تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کیا دعائیں کی تھیں؟ اسی نبی کی دعا کی تھی جس کا تم انکار کر رہے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کے، یعنی ایسا نہیں کہ ابرپٹلی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اب ان کا کیوں شروع ہو گیا. اب بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو وہ بھی دیکھ لیں اور باقی مشرکین مکہ بھی دیکھ لیں. وَإِذْ، اور یاد کرو، یہ بات یہ واقعہ یاد کرو. इब्तला इब्राहिम रब्बुहु। अब देखें, अगर आपने जेर जबर में कहीं गलती कर दी, इब्राहिम मुंह कह दिया, तो इब्राहिम ने आजमाया, इब्राहिम ने नहीं आजमाया, इब्राहिम को आजमाया रब्बुहु, उसके रब ने। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान से कुरान करीम की तिलावत किया करें। उसके रब ने आजमाया, किस चीज में आजमाया, किस तरह से आजमाया, बी कलिमात, इन सात बातों के। बी का माना बहुत सारे माने हैं, इसमें सात का भी माना है। तो क्या आजमाइश हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से आजमाया था। कलिमात से मुराद यहाँ पे क्या है? अहकामात भी हैं कि कई हुक्म अल्लाह ताला ने उनको दिए जिसमें वो पूरे उतरे। आप पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले वो इंसान थे जिन्होंने खतना किया था, मेहमान नवाजी करने वाले सबसे पहले थे, नाखून काटने वाले सबसे पहले थे, मूछें कम करने वाले सबसे पहले थे, सफेद बाल देखने वाले सबसे पहले थे। उन्होंने ही सफेद बालों को देख के पूछा था, या अल्लाह ये क्या है? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये वकार है और इज्जत है। कहने लगे, फिर तो ऐ अल्लाह इसको और ज्यादा बढ़ा दे। सबसे पहले मिंबर पे खुतबा देने वाले थे, सबसे पहले कासिद भेजने वाले थे, सबसे पहले तरबार चलाने वाले थे, सबसे पहले मिसवाक करने वाले थे, सबसे पहले पानी के साथ इस्तंजा करने वाले थे, सबसे पहले पजामा पहनने वाले थे। ने बहुत सारी खसूसियात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, यानी अल्लाह ताला ने उनको जो हुक्म दिया उन्होंने वैसा ही माना। और फिर आपको पता है शरीयत के जितने अहकामात हैं वो कलिमात में आ गए, जितनी चीजों का शरीयत में हुक्म दिया गया और जिनसे मना किया गया। और इसी तरह कलिमात में फिर हुक्म, जो जैसे इनको बहुत सारी ये अहकाम दिए गए थे, इसके अलावा जिन चीजों में इनकी आजमाइश की गई वो भी कलिमात हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत तरह से आजमाया, बहुत तरह से आजमाया। आप अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें तो उनकी जिंदगी स्टार्ट से, यानी जब अपने वतन में थे तो वहां पर भी उनकी आजमाइश हुई, क्योंकि वो ऐसे घराने में पैदा हुए थे जो बुतघर घराना था, यानी बुत बनाते थे उनके वालिद। तो वो उस घराने में पैदा हुए और उसके बाद सारी कौम एक तरफ और अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ। यानी कोई बड़ी, कितनी बड़ी आजमाइश है ये। हमारी तो खानदान के कुछ लोग ही होते हैं वो एक तरफ हो जाएं और हम एक तरफ हो जाएं, तो फिर हमें इतनी परेशानी हो जाती है कि आए देखो मैं अकेली हो गई और सब एक तरफ हैं, और मैं कैसे इनसे मुकाबला करूं या मैं किस तरह से दीन पे कायम रहूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तनहा उनके मुकाबले में खड़े रहे। फिर देखें, वालिद से भी आजमाए गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, के बाप एक तरफ था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। घर वालों के साथ जो होता है ना इंसान का मामला एक बिल्कुल अलग हो जाता है कि सभी एक तरफ हो जाएं, लेकिन अगर इंसान के अपने प्यारे रिश्ते साथ हों तो उसको बहुत सपोर्ट रहती है। लेकिन जब अपने घर से भी ये हाल हो कि बाप ने कहा था इब्राहिम तू मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे पत्थर मार मार के मार दूंगा, रजम कर दूंगा, संसार कर दूंगा, और इन द एंड तो निकाल ही दिया था बाप ने घर से। फिर उसके बाद नमरूद के साथ, यानी जो वक्त का बादशाह था, उसके साथ जब इनका मुनाजरा हुआ तो वो कितनी बड़ी बात थी। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, कोई हुकूमत एक तरफ हो और एक बंदा एक तरफ हो तो उसका क्या करेंगे वो? जज़ायरा हुकूमत है जिनके पास, उनके पास इख्तियार है, तो उनके साथ मुकाबला करना कोई छोटी बात है। फिर उसके बाद आग में डाले जाने का इम्तिहान कितना सख्त इम्तिहान था। उस वक्त कह सकते थे कि जान बचाना तो अव्वलीन चीज है, पहले मुझे अपनी जान बचानी चाहिए फिर और कुछ चीज को देखूंगा। नहीं, डटे रहे उस वक्त भी। फिर उसके बाद उन्होंने निकाल दिया कौम ने वहां से, तो वतन की भी कुर्बानी दी, कितनी बड़ी आजमाइश होती, इंसान जहाँ पे पला बढ़ा रहा, वहां से निकाल दिया जाना, घर वालों से दूर हो जाना, अपने जो ट्राइब था, अपने कबीला था, अपनी कौम थी, उनसे अलग हो जाना, और किस लिए? सिर्फ इस तौहीद के लिए, दीन के लिए, जहां पे तौहीद को मानना, उसकी कीमत जो है आग में जाना हो, वहां पे सोचें कितना मुश्किल है। फिर उसके बाद बीवी किसे आजमाए गए कि जब वो बादशाह ने इनकी बीवी को पकड़ लिया था, सजत सारा को, उसके बाद फिर औलाद नहीं थी, कितने जमाना गुजर गया, 90 साल के हो गए और बूढ़े होके भी औलाद नहीं है, और फिर अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, तो फिर फरमाया कि मियाँ ये बीवी और बच्चे को छोड़ा एक बियाबान में जहां पे कुछ नहीं है, कुछ सोचा कभी आपने कि कुछ भी नहीं था, एक चीज वहां पे उगती नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई जीरू वहां पे था नहीं, कोई इंसान नहीं था, दूर दूर तक बस एक टीले के ऊपर छोड़ के आ गए। आज से सोचे हम अपने घरों में आराम से बैठे हों, और फिर हमें हमारे हस्बैंड कहीं चले जाएं, और घर में सारी सहूलियात हैं, हम दुनिया जहान करीब रिश्तेदार दोस्त अहबाब भी हों, एक महीने के लिए भी छोड़ के चले जाएं तो क्या हाल हो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ एक अल्लाह की खातिर, कि उसका हुक्म है। अल्लाह ताला ने वहां से भी आजमाया, तो जुदाई जो होती है, किसी का बच्चा दूर चला जाए, और वो भी कोई ये नहीं कि कोई कम्युनिकेशन है, कोई फोन है, कोई बातचीत हो सकती हो, कोई खैर खबर हो सकती है, इनका क्या सोचे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, और साल हा साल गुजर गए। कहा जाता है वहां पे सैलाब आता था, हर तरफ पानी हो जाता था, और माँ बेटा अकेले उस टीले पे बैठे होते थे, इर्द गिर्द सारा पानी होता था। अल्लाह अकबर, कैसे वो दिन और रात गुजरते होंगे बीबी हाजरा के। और तो कई साल ऐसे गुजर गए थे, फिर जुरहम कबीला आया था, और आखिर में जो इम्तिहान अल्लाह ताला ने लिया, अल्लाह अकबर, के वो बेटा जो इतनी दुआओं से मिला, रब्बी हबली मिन सालेहीन, अल्लाह मुझे सालेहीन में से दे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी दुआ की होगी सोचें। अब वो दुआ जब कबूल हुई, तो एक तो दूरी बेटे से, और फिर जब आए हैं बेटा भागने दौड़ने की उम्र को पहुंच गया है, उस वक्त क्या कहा जा रहा है, इब्राहिम इसको जिबा करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने खुद कुराने पाक में फरमाया, इन्न हाज़ा लहुल बला उल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम उसमें भी पूरे उतरे, तब जाके अल्लाह ताला ने फरमाया फअतम्महुन्ना, उन्होंने पूरा कर दिया इनको, जितने इम्तिहानों में डाला गया, जितने हुक्म दिए गए, हर आजमाइश में वो पूरे उतरे हैं, चाहे हिजरत करनी पड़े, चाहे अल्लाह के रास्ते में अपने खानदान को, घर बार को छोड़ना पड़े, वतन को छोड़ना पड़े, बीवी बेटे को छोड़ना पड़े, या उनकी कुर्बानी देनी पड़े, कोई तरह का इम्तिहान ऐसा नहीं जिसमें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना पूरे। और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ जैसे हम होते हैं कि कोई कुछ किया कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत किया, अतम्मा, मैंने मैंने आपको क्या बताया माने में, ऐसे पूरा करना कि कोई कमी ना रह जाए, नहीं 100% फ्लाइंग कलर्स के साथ, जैसे कहते हैं 100% मार्क्स के साथ, पोजीशन के साथ पास हुए। इम्तिहान किस लिए लिया जाता है, क्या मकसद होता है, ये नहीं कि अल्लाह ताला किसी को पसंद नहीं करता तो उससे इम्तिहान ले लेता है, अल्लाह ताला इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि इंसान को आजमा ले वो कितने पानी में। आपके भी इम्तिहान लिए जाते हैं ना, टेस्ट किस लिए लिए जाते हैं, आपकी काबिलियत का पता चले, वरना तो ऐसे सारे ही कहेंगे जी हम बड़े काबिल हैं, हमें तो सारा आता है। इम्तिहान में पता चलता है कि कौन कितना है, कितने पानी में है, क्या है उसका स्टेटस, क्या है उसका मर्तबा, कहाँ खड़े हुए हो आप, इम्तिहान से पता चलता है। और ये नहीं कि अल्लाह ताला को देखना है, अल्लाह ताला तो अलालीम है, उसे तो सब कुछ जानता है, इंसान को ये दिखा देना है और सबको दिखा देना है, ताकि कयामत के दिन जो अजाब में जाए उसको भी पता हो कि मैं क्यों अजाब में जा रहा हूं, और जो जन्नत पाए वो भी प्रूवन हो, प्रूव किया जा चुका हो कि ये जन्नत के काबिल है। ये प्रूव करने के लिए, उसके लिए भी, उस बंदे के लिए भी, क्योंकि इस तरह तो हम सारे अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, और दावे तो हमारे इतने हैं, जान दे देंगे हम दीन के लिए, कुर्बानी दे देंगे हम इसके लिए, और नारे भी हमारे पास बहुत खूबसूरत होते हैं, इतने नारे लगाते हैं, इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये पता आजमाइश के वक्त चलता है कि कौन कितने पानी में है, किसका क्या स्टेटस है। जिसको आजमाया ही ना गया हो ना, वो तो साबित ही ना हुआ ना कि वो कहाँ है, वो कैसा है। आम हालात में हम सब बहुत अच्छे हैं, मोमिन हैं, फलां हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जब इम्तिहान होता है, आजमाइश आती है, अल्लाह ताला आजमाइशों से बचाए, मगर इम्तिहानों से पता चलता है कौन क्या है। आम हालात में हम सब नॉर्मल ही नजर आते हैं, मगर हम में कितने एबनॉर्मल हैं, ये हालात बताते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं हर शख्स के अंदर 70-80% ऑफ, हर लोगों में 70-80% ऑबनॉर्मेलिटी होती है, लेकिन चूंकि हालात नॉर्मल होते हैं इसलिए सब एक कवर अपने ऊपर चढ़ाए होते हैं, और सभी एक जैसे ही नजर आ रहे हैं हम। पता उस वक्त चलता है जब कोई आजमाइश आती है, या तो बहुत ज्यादा खुशी आ जाए, वो भी आजमाइश है, उसमें करते क्या है, आपे से बाहर ही हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कोई दुख आ जाए, तब भी कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी की मौत वाकई हो जाए, या घर में कुछ ऐसा हो जाए, उससे भी पता चलता है कि कौन क्या है उस वक्त है। वरना तो देखिए, कयामत के दिन अगर किसी को निचला दर्जा मिले, जन्नत में चला भी गया निचला दर्जा, वो कहेगा नहीं, मैं मुझे तो ऊपर वाले चाहिए, क्योंकि मैं तो इतना ईमान वाला था दुनिया के अंदर, मुझे आजमा के तो देखते, फिर मैं बताता मैं क्या था। अल्लाह ताला दुनिया में आजमाइशें इसीलिए भेजता है, अगर किसी को वहां पे अजाब हो तब भी पता हो उसको कि मैं क्या करता था। तो ये हमारे दावों की सच्चाई का सबूत होता है कि जब इंसान अपने इम्तिहान में पास होता है। ये जो हम दावे करते हैं ना, हमारे दावे कितने सच्चे हैं, ईमान का दावा करना बहुत आसान है, मगर हम में से कौन वाकई मोमिन है, जिसका अल्लाह पे तवक्कुल है, वो आजमाया जाएगा तो पता चलेगा। और जब आजमाइश आती है, फिर ही उसके बाद जो पास होता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर इनामात करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को आजमाया गया, मगर जितनी आजमाइशें मेरे ऊपर आई किसी पे नहीं आई। तो सबसे ज्यादा अंबिया आजमाए गए, ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला को महबूब नहीं थे, वो अल्लाह ताला के सबसे महबूब है, लेकिन उनके ऊपर सबसे ज्यादा आजमाइशें क्यों आती हैं, क्योंकि वो सबके टॉप पे हैं। आप देखें, जो टॉप पे होगा उसका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होगा ना। आप देखें ना, एक बच्चा नर्सरी में है, नर्सरी वाले से आप मास्टर्स का थोड़ी एग्जाम ले लेते हैं, उसे नर्सरी का ही लेते हैं ना। लेकिन जो जितने बड़े ओहदे, जितनी बड़ी क्लास में है, जितने बड़े ग्रेड लेवल पे है, उसका इम्तिहान उसके मुताबिक होता है। अब हमारे जैसे लोग नर्सरी के लोग हैं, हमारे पे इतने ही इम्तिहान आ जाते हैं तो हम उसके ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बड़े इम्तिहान से तो अल्लाह ताला माफ करे, हम बड़े हैं ही नहीं, वो बड़े लोग थे इसलिए बड़े इम्तिहान थे, क्योंकि उनके दर्जे भी बड़े हैं, फिर उनको जो मकामात मिलेंगे जन्नतों में, वो तो हमारे जैसे आम लोगों के थोड़ी हैं, वो तो उनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इम्तिहान दिया, और एक नहीं दिया, बहुत सारे दिए, लेकिन ऐसे नहीं था कि वो सारे एक ही टाइम पे आ गए इम्तिहान, ऐसे नहीं हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो फाइनली वो जो बड़ा इम्तिहान था इस्माईल अलैहि सलाम की कुर्बानी का, वो तो एंड में आया। पहले अल्लाह ताला छोटे 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 इम्तिहान से गुजारता है, फिर बड़े पे, जैसे एक बंदा नर्सरी में है, उस छोटा इम्तिहान, फिर आगे फर्स्ट ग्रेड में, फिर सेकंड में, फिर 10th ग्रेड में उससे बड़ा इम्तिहान, फिर आगे 12th ग्रेड में उससे बड़ा, फिर बैचलर्स में उससे बड़ा, फिर मास्टर्स में उससे बड़ा, फिर PhD में उससे बड़ा, कितना। तो उसके लेवल के मुताबिक है ना, इसी तरह एक ही दफा नहीं आ जाते इम्तिहान, और एक ही दफा अल्लाह ताला बड़े इम्तिहान में नहीं डालता, पहले छोटे छोटे इम्तिहान, फिर वो पोजीशन लेता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो फिर बड़े बड़े इम्तिहान में बैठता है। इम्तिहान उसके लेवल के मुताबिक होता है। इसीलिए तो बीबी हाजरा का इम्तिहान हुआ था ना, जब अकेले रहना था, तो अल्लाह ताला तूने इस इम्तिहान के काबिल समझा होगा तो इसमें डाला होगा ना। तो अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। तो आजमाइशें कभी मांगे नहीं, कभी मांगनी नहीं चाहिए, मगर आजमाइश आ जाए तो फिर अल्लाह ताला देखता है कि अब क्या करते हैं कोई, फिर अल्लाह ताला जान लेता है और दिखा देता है लोगों को कि ये मेरा बंदा किस काबिल है। फिर ऐसे लोग जो के मुनाफिक हुए हैं, या ऐसे लोग जिनका ईमान बस कमजोर सा था, वो तो बिल्कुल ही भाग जाते हैं। आजमाइश आएगी जरूर, और हर एक को आएगी, हर एक की जिंदगी में आती है। अगर कुछ लोग होते हैं जो 100% उसमें पूरा उतरते हैं, कुछ 90 मार्क्स लेंगे, कुछ 50 लेंगे, कुछ फेल ही हो जाएंगे, आगे आएंगी ना। वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइं मिनल खौफि वल जुई व नक्सि मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। हम आजमाएंगे तुम्हें, हर सूरत आजमाइश होगी, तुम्हारा इम्तिहान जरूर होगा, कहीं खौफ से, कहीं भूल भूख से, कहीं मालों और जानों की कमी से। बशारत है सबर करने वालों को, सबर तम्मा हुन्ना में है कि सबर के साथ निकलना। हाँ, ये बेशक है, दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता, हाँ जी मुझे से कोई चीज चली भी जाए तो मुझे तो कोई दुख ही नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर औलाद की भी मोहब्बत है, खाना पीना भी जरूरियात हैं, इस ये चीजें हैं जो इंसान को चली जाए तो तकलीफ होती है, कोई दुनिया से चला जाए तकलीफ होती है। मगर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अपने बेटे की मौत पे क्या फरमाया था, आंखें आंसू बहाती हैं, दिल में दुख है, मगर जुबान से वही अदा होगा जिससे हमारा रब राजी होता। ऐ इब्राहिम, तेरी जुदाई की वजह से बड़ा सदमा पहुंचा है मुझे। तो रंज तो पहुंचेगा, आंखें भी रोएंगी, मगर इस रंज का इजहार कैसे करना है ये देखा जाता है। अजाब इस पे नहीं है कि आंसू क्यों बहे, बल्कि जुबान से क्या बोला। अल्लाह हु अकबर। तो इब्राहिम अलैह सलाम को देखें, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी और आजमाइशों में से गुजर के इसमें पूरे उतरे, तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया, काला, फरमाया उसने, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम अब हमने तुझे लोगों के लिए इमाम बना दिया, लीडर बना दिया। इससे पता चलता है जब अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है ना, तो जो आजमाइश में पूरा उतरता है, फिर अल्लाह ताला का इनाम उसके लिए होता है। उसके लिए होता है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये कलमा कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें आजमाइशें आएंगी, इसमें अल्लाह ताला देखेगा, एक इम्तिहान के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा, भगोड़े भाग जाएंगे। हाँ, लेकिन वो लोग जो वाकई अपने ईमान के दावे में सच्चे थे, वो खड़े रहते हैं और जमे रहते हैं। कहीं बीमारियों के इम्तिहान आएंगे, कहीं औलाद की तरफ से आएगा, कहीं शौहर की तरफ से आएगा, कहीं खानदान वालों की तरफ से आएगा, फिर अल्लाह ताला देखता है तुम क्या करते हो। फिर उसके बाद वाकई वो लोग जो जम जाते हैं, इसका मतलब है इम्तिहानों के बाद ही दर्जे मिलते हैं, और जब अल्लाह ताला आजमाता है, फिर उसके बाद ही इंसान के लिए नेक्स्ट लेवल पे अल्लाह ताला उसको पहुंचा देता है। ये इंसान अपनी जन्नत बना रहा है, ऊपर से ऊपर लेवल, ऊपर से ऊपर, अचानक नहीं वहां जाके जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे, अचानक ही हो गया, नहीं, ये इंसान जो दुनिया में एक से एक ऊपर दर्जे क्रॉस करता जा रहा है ना, वो दुनिया में अपनी जन्नत बना रहा है। आज नजर नहीं आ रहे, और कई ही लोग आजमाए जाते हैं और फिर वो सब्र करते हैं और उन आजमाइशों से पूरे उतरते हैं, अल्लाह ताला उनको आगे आगे करता ही चला जाता है। तो उनको इमाम बनाया लोगों के लिए, यानी पूरी इंसानियत के लिए उनको इमाम बना दिया, उनको रोल मॉडल बना दिया अल्लाह ताला ने। कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन पी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहि सलाम ने तुम्हारे लिए उसवा रख दिया कि तुम्हारे लिए वो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उनको इमाम बनाया, पेशवा बनाया। इमाम कौन होता है? जिसके पीछे लोग चलते हैं। उनको इमाम बनाया यानी लोग उनको कॉपी करें, लोग उनके पीछे चलें, उनको फॉलो करेंगे। और वाकई देखें यहूदी भी उनको अपना मानते हैं, ईसाई भी उनको अपना, सारे उनको मानते हैं, मुशरिकीन मक्का भी उनको मानते थे, मुसलमान भी उनको अपना इमाम मानते। और फिर उनके नक्शे कदम पे चलने को अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया कि इनके नक्शे कदम पे चलें। तो देखें इम्तिहान बड़ा तो इनाम भी बड़ा। देखा आपने इनाम कितना बड़ा, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र खैर रख दिया, रहती दुनिया तक उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह मेरे जिक्र खैर रहे बाद वालों में, और आज भी उनका जिक्र खैर है। किसी को देखो ना, वो किसी और पैगंबर का इनकार कर रहा होगा, इब्राहिम अलैहि सलाम का नहीं करता। इब्राहिम एक रिलीजन्स ये सारे कहलाते हैं ना, सब इब्राहिम को मानते हैं अलैहि सलाम। अल्लाह ताला ने उनको ऊपर इतनी बड़ी करम नवाजी की। और अल्लाह ताला ने उनके लिए इमामत का मनसब रख दिया। काला, उसने कहा इब्राहिम अलैहि सलाम, व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह हू अकबर। ये वो इब्राहिम है जो अपने बेटे को अल्लाह के नाम पे ज़िबा करने के लिए जा रहे थे ना। लेकिन ऐसा नहीं कि औलाद की मोहब्बत ही नहीं थी, उनको तो कोई फर्क फर्क ही नहीं पड़ता था। हम सोचे हमें ही मोहब्बत है, उनको क्या था? नहीं, मोहब्बत थी। तो जैसे हम तड़प के कहते हैं ना कोई चीज को भी, कि कई दफा लोग आते हैं कहते हैं बस मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, तो वाकई इंसान के दिल में औलाद की मोहब्बत बहुत होती है। फौरन जो भी हमें चीज मिलती है, हमें दिल चाहता है हमारे बच्चों को मिल जाए। तो वो भी ऐसा नहीं है कि उनके दिल में औलाद की मोहब्बत ही नहीं थी, जो वो कोई कोई ऐसे इंसान थे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसीलिए बेटे को भी कुर्बान करने चल। नहीं, वो तो अल्लाह की खातिर कुर्बान करने गए थे, वरना औलाद की मोहब्बत थी तो फौरन कहते हैं ना, ये नहीं कि अच्छा चलो मुझे मिल गया, मुझे क्या। वो मैं जरूरी आती है ना मेरी बच्चों के लिए, है ना मेरी औलाद के लिए। इसके मतलब है इंसान खैर मांगा करे अपनी औलाद के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मांगी थी, और सिर्फ और औलाद नहीं, सिर्फ नस्लों के लिए मांगी। जुर्रियत में नस्ल है, मेरी नस्लों के लिए अल्लाह। और देखें ये मकाम उन्होंने अपनी नस्लों के लिए मांगा, इसलिए क्योंकि ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी नस्लों को रिस्क दे देना, मेरी नस्लों को आगे जाके रिस्क भी मांगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा दिया ना इतना बड़ा, तो इसका मतलब है कि इंसान को जो चीज़ प्यारी होती है वही वो अपनी औलाद के लिए मांगता है। उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में भी, और अल्लाह ताला ने दिया उनकी ज़ुर्रियत में। देखें उनकी नस्लों में उनके बाद जितने नबी आए वो सिर्फ उनकी नस्ल में थे, चाहे मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम, जितने भी ज़करिया अलैहि सलाम, यहया अलैहि सलाम, और भी बेशुमार पैगंबर उनकी नस्ल में आए हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने पैगंबर आए वो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और नबी अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और कहा जाता है इनकी एक और बीवी थी कतूरा, उनकी औलाद से शुएब अलैहिस्सलाम थे। तो देखें कितने सारे पैगंबर, चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, कितने ही पैगंबर हैं जो इनकी औलाद में से ही आए, यानी इनके बाहर कोई आया ही नहीं फिर। और जितनी किताबें हैं इल्हामी किताबें, सारी की सारी सिर्फ इनकी औलाद में ही आई। तो उन्होंने तो दुआ मांगी, वह मिन जुर्रियती, सारी जुर्रियत के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कौला ला यनालु अहदे ज़ालिमीन, ए इब्राहिम नहीं पहुंचेगा मेरा ये वादा, ये मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा, ठीक है बाकियों को पहुंचेगा जो, लेकिन तेरी औलाद में भी जो जालिम होंगे ना उनको ये मनसब नहीं मिलेगा। जालिम कौन है जो अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़े? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो है ना जिन्होंने बिकलिमात इन सारे अहकाम शरीयत को माना, लेकिन इनकी औलाद में ऐसे होंगे जो इन अहकाम से मुंह मोड़ लेंगे, जो नाफरमान होंगे, नाफरमानों को नहीं ये मिलेगा। इससे क्या पता चला आपको कि चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, इब्राहिम जो खलीलुल्लाह है उनकी भी दुआ है, तो उनकी दुआ से भी वो लोग फायदा नहीं उठा सके जो नाफरमान थे अल्लाह ताला के। यानी दुआ भी किसी की तभी काम आएगी चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, जिस वक्त के इंसान खुद अपने अमल में सीधा होगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका अमल सुस्त हो उसका नसब उसको कुछ काम नहीं देगा। क्या मतलब है? यानी अमल अगर इंसान का सही नहीं है तो उसका नसब, उसकी नस्ल किसी से भी हो, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हो या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, कोई फायदा नहीं है उसको इस चीज का। कोई कहे मैं फलां की बीवी हूं, कोई कहे मैं फलां का बेटा हूं बेटी हूं, मेरे तो दादा इतने बड़े वो थे, मेरी माँ इतनी नेक थी, मेरे तो ऐसे था, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर अपना कुछ नहीं है तो, अपने पास कुछ नहीं है, अपना अमल नहीं है, इसलिए इंसान इस चीज के ऊपर भरोसा करके ना रहे कि कोई बात नहीं मेरी निस्बत फलां से मिलती है, मैं फलां खानदान से हूं, मैं सैयद हूं, मैं फलां हूं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दिन अपने बाप को बचा सकेंगे और ना ही किसी और को, अगर उसने खुद जुल्म किया यानी शिर्क किया है। जालिमों में वो भी है जिन्होंने शिर्क करा या जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, वो भी जुल्म है, गुनाह किए वो भी जुल्म है। तो ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी उन लोगों के हक में कबूल नहीं हुई जो जालिम थे। और जालिम जुल्म क्या होता है? उसको किसी को उसका हक ना देना, यानी अल्लाह ताला को उसका उसका हक है कि उसकी फरमा बरदारी की जाए, उसका हक है कि उसको एक इलाह माना जाए। जिसने शिर्क किया उसने जुल्म किया, जिसने गुनाह किया उसने जुल्म किया। और ये भी कि इंसान को अपनी औलाद के लिए दीन मांगना चाहिए, लेकिन जाहिर है जब अपने अंदर दीन की अहमियत होगी तो फिर ही औलाद के लिए भी मांगेंगे ना। अगर अपने अंदर ही दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की माल और मता की बस होती है तो इंसान अपनी औलाद के लिए भी बस हर वक्त यही मांगता है, इनको ये मिल जाए ये मिल जाए, मांगे दुनिया की भी हसना मांगे, मगर आखरत जरूर मांगे। फिक्रे आखरत दुनिया की फिक्र से ऊपर होनी चाहिए। और हम इसके अंदर देखें, जब हमारी आजमाइश होती है, हमारे पर कोई आजमाइश आती है, तो हमने सोचा है कि हमने अतम्मा हुन्ना करना है, पूरा पूरा करना है उसको, तमाम करना है उसको, यानी कोई कमी ना रह जाए सबर करने में, अल्लाह की रजा में राजी रहने में, अल्लाह के फैसले को कबूल करने में। तो उनका देखें फिर, अंबिया तो आए उनकी नस्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, लेकिन जालिम भी थे जैसे ये बनी इसराइल थे, तो इनको फिर कुछ नहीं मिला। या मुशरिकीन मक्का, उनकी नस्ल से ही आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे इस्माइल अलैहिस्सलाम से, तो ऐसे जालिमों को नहीं फिर मिलता। वह इस जाल ललबई तमसाबत लिन्ना सी व अमना। अब चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाया था तो उसकी अब बात आ रही है, और जब बनाया हमने इस घर को, यानी कि इस घर को, खाना काबा को, मसाबत लिन्नास, मसाबा कहते हैं वो जो बार बार लौटने की जगह, एक इसका ये माना है, लौटने की जगह, यानी लोग बार बार इसकी तरफ लौट कर आएंगे, लोगों का दिल इसमें अटका रहेगा। आप देख लें आज किसके दिल के अंदर उस जगह के लिए मोहब्बत नहीं है। हर कोई एक दफा जो बंदा होके आ जाता है, वो ऐसे नहीं है कोई भी दुनिया की ऐसी जगह बता दें कि जहां पे इंसान एक दफा हो जाए, दो दफा घूम के आ जाए, तो फिर कहे तीसरी बार, कहते हैं चलो छोड़ो वो तो देखी हुई है, कहीं और चलते हैं, कभी नहीं जाते वहां पे दोबारा, या उसकी तरफ कशिश महसूस नहीं करते। लेकिन ये घर ऐसा है जिसकी कशिश दिलों के अंदर है, इंसान बार बार लौटता है, अल्लाह ने उसको मसाबा बनाया है लौटने की जगह, इतना ही उसके अंदर कशिश रख दी है कि एक ईमान वाला उसका दिल खिंचता है। अगर किसी का दिल नहीं खिंचता तो उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। और हदीस में आता है हज और उमरा बार बार करते ही रहा करो, इसलिए कि ये गुनाहों को मिटाने वाला और फकर को मिटाने वाला है। गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे लोहा आग में डाला जाए तो उसका मैल कुचैल दूर हो जाता है। इस तरह इंसान हज और उमरे के लिए जाता है तो उसके मैल कुचैल, ये जो उसके गुनाह होते हैं, इस तरह धुल जाते हैं। तो ये बार बार जाने की जगह है, ये नहीं कि बस एक दफा दिन जिंदगी में चलेगा बस काफी हो गया, नहीं, ये बार बार लौटने की जगह अल्लाह ताला ने इसको बनाया। और आज देखें, आज बाज लोग ना कुछ दीन का पता है ना कुछ है, बस प्रोपोगेंडा कर, वहां नहीं जाना चाहिए, सऊदी गवर्नमेंट ऐसी है ऐसी है, इसलिए कोई ना जाए, ना हज के लिए जाओ तो ना उमरे के लिए जाओ, ताकि उनको नुकसान पहुंचे। ये तो इस फरमान की मुखालफत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी नहीं मुसलमानों को मना किया था जिस वक्त काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे, शिर्क से ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है, उससे ज्यादा कोई बड़ी बात हो सकती है, 360 बुत वहां पे रखे हुए थे। उस वक्त भी हुदैबिया में उमरा करने गए थे कि नहीं गए थे? फिर अगले साल उमरा उसी जगह पे किया था ना जहां पे बुत पड़े हुए थे, उससे पहले भी जब मक्का में रहते थे तवाफ उसी घर का करते थे, वहां पे बुत थे, उन्होंने तो नहीं मना किया कि देखो यहां पे बुत है यहां पे मत जाओ। और हम पढ़ चुके हैं वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके कि उनको वीरान कर दे। इनको किसी हुकूमत से, किसी सरकार से इनको मसला है तो उसके लिए अल्लाह के घर को ही बंद करना चाहते हैं कि वो वीरान हो जाए, वहां पे कोई जाए ही ना। इससे रोकना कितना बड़ा गुनाह है, बस क्योंकि हमें नहीं पसंद है, बायकॉट करो हज का, बायकॉट करो उमरे का, ये मना करने वाले ये सबसे बड़े जालिम हैं। और साफ मुंह से मना कर रहे हैं उस जगह को जिसको अल्लाह ताला ने मसाबा बनाया, और जिस कुरान में लिखा हुआ है कि कौन इससे बड़ा जालिम हो सकता है जो अल्लाह के घर से, आपको किसी से कितनी भी शिकायत हो आप अल्लाह के घर से कैसे रोक सकते हैं? तो ये वो जगह है जो अल्लाह ताला ने लौटने की जगह बनाई, बार बार जाने की जगह बनाई। और ये इस जगह को अल्लाह ताला ने सवाब की जगह भी बनाया, मसाबा मैंने आपको बताया सवाब की जगह, यानी यहां जाना इतना बड़ा सवाब है कि 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब एक नमाज वहां पे अदा करने का है। आप सोचें कि पूरी जमीन पर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जो इससे ज्यादा सवाब कमाने की जगह हो, यानी आप वहां पे जा रहे हैं क्या कमाने के लिए? सवाब, नेकी कमाने के लिए। ये दुनिया कायनात में सबसे बड़ी सवाब की जगह है इस जमीन के ऊपर। आप दुनिया में कहीं और चले जाएं कहां ऐसा सवाब पाएंगे? तवाफ भी करते हैं तो हर कदम के ऊपर, तवाफ पे नहीं, हर कदम पे आप बड़ा चक्कर लगा रहे हैं, अगर ऊपर आपको चक्कर लगाना पड़ता है आप कहते हैं हाय क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक एक कदम के ऊपर एक गुना माफ हो रहा है, एक नेकी लिखी जा रही है, एक दर्जा बुलंद हो रहा है, एक तवाफ कर दिया एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिल रहा है, 1 लाख नमाजों का सवाब है। और तवाफ तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं कर सकते, एक वो वक्त आएगा कि ये काबा नहीं रहेगा, इसको ढा दिया जाएगा, उससे पहले इस जगह का फायदा उठाओ, अपनी नेकियां और कमा लो, देखो आखिरत में कितनी हमें नेकी की जरूरत होगी। लेकिन आपको कह दिया जाए कि आज यहां पर इस जगह पर आपको $1 देंगे तो आपको $1,00,000 के बराबर आपको चीजें मिलेंगी। जब $1,00,000 आप कमा लो तो उस अदा करो तो जितना मिलेगा $1 पे आज उतना मिलेगा। एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब। लोग कहते हैं 40 नमाजें मदीना में पढ़ें, मदीना में भी फजीलत है लेकिन मक्का जितनी नहीं है। 40 नमाजों वाली कोई हदीस नहीं है सही। मक्का में जो फजीलत है 1,00,000 नमाजों की, मदीना में 1,000 भी आता है, सॉरी हाँ 1,000 भी आता है, 50,000 भी आता है। लेकिन जो मक्का के बराबर नहीं है कोई भी जगह। तो ये मसाबत लिन्नास है, इसकी तड़प होनी चाहिए इंसान को, दिल करना चाहिए कि वहां जाएं और अपनी नेकियां बढ़ा लें। वह अमना और अमन की जगह, इसको अल्लाह ताला ने अमन की जगह बनाया। व तखिजू और बना लो मी मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो। मकाम इब्राहिम कौन सी जगह है? वो जो पत्थर जिसके ऊपर खड़े होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा को बिल्ड कर रहे थे उसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता है कि हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लें, तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म उतार दिया। तो ये मुवाफ़क़ात उमर में से है, यानी जिसमें मुवाफ़क़त की अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की। तो यानी वो हज़रत उमर ने ये फरमाया, अल्लाह ताला ने वैसा ही कर दिया। कई अहकामात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने कुछ कहा और अल्लाह ताला ने वैसा ही हुक्म उतार दिया। उनकी शान देखें कितनी है इन सहाबी की। तो ये जगह भी इस तरह से अल्लाह ताला ने इसको मुसल्ला बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरे अस्वद का जब इस्तलाम करते थे आखिरी राउंड जब किया तो उसके बाद फरमाते थे व तख्दु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, बना लो मुकामी इब्राहिम को मुसल्ला और फिर वहां जाके 2 नफल अदा करते थे। और आज भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अब आप मस्जिद में कहीं पे भी नफल पढ़ लें क्योंकि इतना हजूम होता है कि वहां जाके नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इमाम है वो आज भी उसी के पीछे खड़ा होता है और वहीं से नमाज पढ़ाते हैं वो इमाम साहब। तो अल्लाह ताला ने इसको बनाया है मुसल्ला। इससे हमें पता चलता है अल्लाह ताला कितना कदरदान है, कितना कदरदान है। जैसे आप देखें ना, कोई बड़ा आदमी होता है ना तो उसके नाम के ऊपर कोई रोड रख दी जाती है, कोई कोई जगह को उसका नाम दे दिया जाता है, उसके नाम से उसको मौसूम कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे ये मकाम इब्राहिम इसका नाम दे दिया, इस पत्थर का जिस पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बिल्ड किया था, और इसी के पीछे बता दिया कि अब नमाज पढ़ो तुम। और ये जो पत्थर है ये जन्नत का पत्थर है। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा की तामीर कर रहे थे तो दीवारें जब ऊंची हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुश्किल हुई कि वो कैसे, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम तो पत्थर दे रहे थे उनको और अब वो कितनी ऊपर कैसे रखे, तो अल्लाह ताला ने इस पत्थर में ये सलाहियत पैदा कर दी। ये खुद ही ऊंचा हो जाता था, उनको जहां तक उन्होंने पहुंचना होता था वहां तक ले जाता था, और इस तरह उन्होंने दीवारें ऊंची की। ये मौजजा था। और अल्लाह ताला ने इस पत्थर के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान नक्श कर दिए। आज आप जो देखते हैं वो जो गोल्डन सा बना हुआ है शीशे के साथ, उस अंदर आप झांक के देखें तो वो एक निशान लगे हुए हैं। वो इतने गहरे निशान नहीं है, असल में ये निशान मिटना शुरू हो गए थे, लोग इसको चूमना शुरू हो जाते और रखते थे। तो ये चूमने की ये नहीं है, इसका इसकी सुन्नत चूमने की तो सिर्फ बोसा देने की हिजरे अस्वद को है, इसको नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो गए थे, तो अब उन्होंने उसके ऊपर एक स्टील का वो लगा दिया और उसके ऊपर नक्श कर दिए, वो ही उसके ऊपर ही जहां पे वो पत्थर था उसी के ऊपर वो बना दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ की हुई थी और कोई वक्त में उन्होंने अल्लाह ताला के किसी हुक्म के ऊपर चूं चरा नहीं की, अल्लाह ताला ने फिर देखे उनकी कैसी कदरदानी की कि उनके तो पैरों की जगह है वो, ये नहीं कि कोई और है, कोई कोई जैसे हम तो किसी सर की पगड़ी को समझते हैं इज्जत वाली चीज है, पैरों की चीज को तो नहीं समझते। अल्लाह ताला ने उनके पैरों के निशानों को भी, उनके कदमों की जगह को भी इतनी इज्जत अता फरमा दी कि उसको नमाज की जगह बना दी, ऐसा अल्लाह ताला ने उनके सदसे कबूल किया। तो याद रखें, अल्लाह ताला किसी के अमल को जाया नहीं होने देता। जो अमल उसने अल्लाह की खातिर खालिस होके किया हो ना, अल्लाह ताला कैसे कदरदानी करता उसकी। जो अल्लाह के लिए कुछ लगाता है ना, तो अल्लाह ताला अशकूर है, कदरदान है, वो उसकी मेहनतों को देख रहा है, वो उनको जाया नहीं करता। कभी आप क्लास ले रहे हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं, थक रहे हैं, क्लास लंबी हो गई है, या रात को जाग के आप सबक याद कर रहे हैं, नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं। कभी आपने किसी कहीं जाना था, आप कोई अपना फन कुर्बान कर रहे हैं, बड़ी इंजॉयमेंट थी, बड़ा मजा था वहां पे, वो आपने कुर्बान कर दिया, या अल्लाह का कोई हुक्म मानने के लिए आपने कोई कुर्बानी दी है, वो अल्लाह ताला की नजर में है, वो बेकार नहीं है। ये आपकी मेहनतें, ये आपका बैठना, ये आपका थकना, ये आपकी नींद की कुर्बानी देना, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं जाएगा। देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस मिसाल से कि जिस रब ने उनके कदमों की जगह को भी इतना बड़ा ऑनर दे दिया कि रहती दुनिया तक लोग यहां पे नमाज पढ़ेंगे, इसको मुसल्ला बनाएंगे, आप सोचें तो सही, वो रब कितना कदरदान है। बल्कि आले इमरान में फरमाया, फी आयात मुबय्यिनात मकामो इब्राहिम, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है मकाम इब्राहिम। अल्लाह अकबर, हिजरे अस्वद भी जन्नत से आया, ये भी जन्नत का पत्थर है। जो पास हो जाता है ना उसके साथ अल्लाह ताला ऐसे कदरदानी का मामला फरमाता है, सुभान अल्लाह। सारा हज आप देख लें, इन्हीं के खानदान की याद है, कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कारनामे, कहीं बीबी हाजरा का दौड़ना, कहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जगह, अल्लाह अकबर। और जिसकी नस्लें संवर जाएं, जिसकी नस्लों में पैगंबर उठ गए, और क्या इससे बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, बहुत देर बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले थे उनको, बहुत बुढ़ापे में जाके, लेकिन उसके बाद आगे नस्लें देखें, अम्बिया का एक सिलसिला ऐसा है कि बस इनके बाद तो इनके खानदान से नबूवत बाहर गई ही नहीं। अल्लाह अकबर। वअहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, और हमने अहद लिया, यानी हमने वसीयत की कि इला आगे आ गया ना, अहद के बाद अगर इला आ जाए तो यानी होता है कि किसी को जिम्मेदारी दे देना, किसी को कोई काम सौंप देना, उसके जिम्मे लगा देना। हमने क्या जिम्मे लगाया उनके, किन के? इब्राहिम के भी और इस्माइल अलैहिस्सलाम के, दोनों के। क्या? अन तौहिरा बैतियल, कि मेरे घर को दोनों, ताहिरा तुम दोनों मेरे घर को पाक साफ कर दो। पाक साफ क्या करना है? पाक साफ, एक पाकी साफी जो पाकी और सफाई है, एक है जाहिरी। पहले जाहिरी को देख लेते हैं। जाहिरी का मतलब ये कि हर तरह की गंदगी से, ट्रैश से, इनसे पाक साफ रखना। इससे हमने पहले भी बात की थी मस्जिद के आदाब में, कि मस्जिदों को पाक साफ रखना ये जरूरी है। गंदगी डालना वहां पे भी लोगों को उससे दूर करना होता है, ये भी मना करने के बराबर है मस्जिद से, जिसका आप पीछे हमने पढ़ा है कि कौन इससे बड़ा जालिम हो सकता है जो मना करे। जब आप वहां पे गंदगी डालेंगे, वहां पे गंद पड़ा होगा, किसी ने थूक फेंका हुआ है, किसी ने टिश्यू फेंके हुए हैं, किसी ने रैपर्स फेंके हुए हैं, टॉयलेट गंदे हैं, तो फिर क्या होगा? लोगों का दिल नहीं करेगा आने का। उनकी इबादत में खुशू नहीं होगा अगर स्मेल आ रही है प्याज की। इसीलिए प्याज खा के लहसुन खा के मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बदबूदार कपड़े पहन के मत जाएं वहां पे कि आपके साथ खड़े होने वाला स्मेल महसूस करे और उसको परेशानी हो, उसकी नमाज में दिल ना लगे, ना मुंह से स्मेल आए ना कपड़ों से स्मेल आए, ना ऐसे पसीने में शराबूर होके पहुंच रहे हैं, कई दिन से नहाए नहीं हुए, खास तौर पे रमजान में वो उसी अबाया के अंदर घरों के अंदर फ्राइंग हो रही है, वो ही स्मेल उसके अंदर है और फिर उसी तरह वहां चले आ रहे हैं। खास तौर पे इसका इहतमाम करें कि मस्जिदों के लिए खुजू जीना तो कुमिंदा कुल्ली मस्जिद। बनी आदम को ये कहा गया कि असूर आराफ में आ गया आता है कि अपनी जीनत मस्जिद के लिए इख्तियार करो, जीनत इख्तियार करा करो मस्जिदों में जाने के लिए। ये मतलब नहीं अब बन संवर के जाना शुरू कर दें, परफ्यूम लगा रही हैं और फिर जा रही, नहीं, साफ सुथरे कपड़े पहन के। तो मस्जिद के ये आदाब में से, और देखें उन दोनों का काम क्या लगाया, ये कौन हस्तियां हैं, अल्लाह माफ करे, ये कोई सफाई करने वाले थोड़ी हैं। हम तो सोचते हैं लो हम मस्जिद को साफ करें, हम मस्जिद में जो वैक्यूम करें, हम मस्जिद से टिश्यू उठाएं, मेरा काम है ये। किसी इमाम को या कि इवन किसी मुसल्ली को भी कह दिया जाए, मुसल्ली कहते हैं नमाज पढ़ने वाले को, मुसल्ला कहते हैं नमाज की जगह को, किसी मुसल्ली को कह दिया जाए आप जरा यहाँ पे वैक्यूम कर दें, जरा आप ये गंद उठा दें, लो हम ये काम करेंगे। इन्होंने इन्होंने सफाई करने वाला कोई नहीं रखा, बल्कि उल्टा हम तो गंद मचा के जाते हैं। तो सोचें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हस्तियों को ये फरमाया कि आपने सफाई रखनी है अल्लाह के घर की, और सिर्फ ये बैतुल्लाह का मामला नहीं है, हर मस्जिद अल्लाह का घर है, उसकी भी उसी तरह सफाई रखनी है, और इससे कोई नीचा नहीं हो जाता, क्योंकि ये काम अल्लाह ताला ने इन बड़ी बरगजीदा हस्तियों को ये काम दिया था। तो कोई अपने आप को इसमें ना समझे मैं कोई सफाई करने वाली हूं, मैं कोई मेड हूं, नहीं, ये ऑनर है, क्योंकि ये ऑनर अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया। तो मस्जिदों की सफाई करनी चाहिए, इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, बजाय इसके कि हम मस्जिदों के अंदर चीजें फेंक रहे हैं। अगर आपके पास टिश्यू भी है ना, उसको भी वहां ना फेंके, अगर आपका बाल भी टूट जाता है ना, तो उसमें भी बेपरवाह होकर वहीं ना फेंक दे, खुद ही कर लेंगे साफ। अगर उसका बाथरूम यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई का एहतमाम रखें कि मैं जहां यहां से जाऊं तो मेरे आने बाद आने वाले के लिए मैं इसको साफ छोड़ के जाऊं। बच्चों को भी सिखाएं, हमारा तो हाल ये है, हमारे बच्चे वहां पे इसको प्लेग्राउंड बनाए होते हैं, या हम खाना पीना वहीं पे कर रहे होते हैं। इवन आप देखें अल्लाह ताला माफ करे, यानी ये हमारे एक उम्मत मुस्लिमा का अलमिया समझ लें कि किसी जगह पे भी हम हज पे गए होते हैं, कभी आप देखें मुजदलफा में रात गुजारी है और उसके बाद जब आप जा रहे होते हैं वहां से, कभी आप उस मैदान का हाल देखा करें, या मैदान अरफात से आप जा रहे हो जहां पे पूरा दिन गुजारा है, वहां पे तो पूरा दिन गुजारा है, मुजदलफा में सिर्फ रात गुजारी होती है, जब बसें जा रही होती है ना आपको नजर आ रहा होता है इर्द गिर्द क्या है, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी आप देखते हैं तो अपना सर पकड़ लेते हैं कि लोगों को क्या हो गया है, कहीं छिलके पकड़ पड़े हुए हैं, कहीं जूस के डब्बे पड़े हुए हैं, कहीं रैपर्स पड़े हुए हैं, कहीं लिफाफे उड़ रहे हैं, ऐसे लगता है या अल्लाह यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये हमारी आदत ही बन चुकी है, अभी हम हज पे आए होते हैं लेकिन जिधर बैठते हैं उधर गंदगी, हरम में भी बैठे हैं तो वहां पे भी ये, जबकि पाक साफ रखने को कहा गया, हम हज उमरे के लिए जब जाते हैं हम वहां पे क्या हालात की होते हैं, खास तौर पे जब इफ्तारी होती है, खजूर भी खा के तो उसकी गुठली मजा ले के वहां से उठा ले, वहीं पे पड़ी होती है, लोगों के पैरों में आ रही होती है, तवाफ करने वाले ऊपर स्टेप कर रहे होते हैं, चुभने लगती हैं, लेकिन परवाही कोई नहीं, खुद ही उठाएंगे ये सफाई करने वाले, और जो वहां पे सफाई करते हैं उनका ऑनर समझें, कितना बड़ा ऑनर है उनका, ये सुन्नत है इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की, ये कोई ऐसे छोटे मामूली लोग नहीं है, उनको ऐसे ना समझे, इतना बड़ा अल्लाह ताला किसी को ऑनर देता है कि अपने घर की खिदमत कराना उससे, तो कभी इसमें आर ना जाने, कभी इसके ऊपर हकारत ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मस्जिद के अंदर किबले की तरफ दीवार पे बलगम लगा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से उसको खुरचा और उसको निकाला और फरमाया कि मेरे मेरे सामने मेरी उम्मत के आमाल पेश किए गए, तो उसमें बुरे आमाल में मस्जिदों को गंदा करना था। ये भी आता है। आप सोचें हमारे आमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाते हो, तो फिर वो क्या देखते होंगे कि ये मस्जिदों का क्या हाल करते हैं। और आपको उसका भी पता है, वो जो एक औरत, काली औरत थी और मस्जिद की सफाई करती थी, जब वो गायब हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा तो पता चला वो फौत हो गई। आपने फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया, उसकी कब्र पे जाके उसके लिए नमाज पढ़ी, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। तो ये सोचें कि कितनी एक ऑनर की बात है जिनको अल्लाह ताला चुनता है मस्जिदों की सफाई के लिए। तो एक हो गई ये जाहिरी सफाई, दूसरी क्या है, बातनी सफाई, यानी इस जगह को शिर्क से पाक रखा जाए, बातिल अकायद से पाक रखा जाए, यहाँ पे कोई बिदतें ना हो, यहाँ पे किसी और को ना पुकारा जाए, किसी और की अजमत दिल में ना लेकर आई जाए, इससे भी इसको पाक रखा जाए। ये नहीं कि मस्जिदों में चले गए वहां पे औरों के जिक्र हो रहे हैं, कभी उनकी बातें हो रही हैं, कभी नातें ऐसी पढ़ी जा रही हैं जिसमें शिर्क है, कभी औलिया अल्लाह के किस्से हो रहे हैं, बस उनके किस्से कहानियां ही हैं, अल्लाह का जिक्र तो कम है, बस किस्से कहानियां ही दी जा रही, और कहीं पे तो कॉमेडियंस बुला लेते हैं कि अजय कॉमेडियंस आ रहे हैं आ जाए मस्जिद के अंदर, कमी शेर व शायरी के मुकाबले हो रहे हैं वहां पे। मस्जिदों को ऐसी चीज ना बनाएं, ये अल्लाह के जिक्र की जगह है। और किसके लिए आप ये सफाई करें और इस तरह से इसको पाक रखें, लितौईफीन, तवाफ करने वालों के लिए। सोचें तवाफ करने वाले का कितना बड़ा मकाम है, इसके लिए इसको साफ रखें। और मैंने जैसे आपको बताया लोग तवाफ कर रहे होते हैं और नीचे क्या होता है, वल आकिफीन, और एतकाफ करने वाले, वह रुका सुजूद और रुकू और सिद्धे करने वालों के लिए। और एक तो तवाफ और एतकाफ का माना हो गया, एक तवाफ का मतलब ये भी होता है चक्कर लगाना, उसी से तवाफ भी निकला है ना, चक्कर लगाना। तो चक्कर लगाने वाले को, यानी जो बार बार वहां जाते हैं, अब हो के आ गए आप, उसके बाद फिर आप चले गए उमरा करने, फिर आप चले गए उमरा, जो वापस आते जाते रहते हैं उनके लिए। और इतकाफ करने वाले का फिर माना क्या होगा, आकिफ उसको कहते हैं जो जम के बैठ जाता है, तो यानी जो ऐसे मेहमान अल्लाह ताला के आए हुए हैं और वो वहां पर बैठे हुए हैं इबादत कर रहे हैं उनके लिए। तो मस्जिदों को इसलिए साफ रखना चाहिए कि लोग इबादत के लिए जब आएं तो उनको आसानी हो, उनका दिल इबादत में लगे। व इज़ क़ाला इब्राहीम, अब यहां से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं शुरू हो जाती हैं। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और रब्बी जाल, जब यहाँ पे इस जगह पे ये तामीर किया, तो ए मेरे रब तू बना दे हादा बलदन आमीना, इस शहर को अमन वाला बना दे। उन्होंने क्या दुआ मांगी इस शहर के लिए कि अल्लाह इसको अमन अता फरमा, क्योंकि किसी जगह पर अगर अमन नहीं है ना तो वहां पर रहना मुश्किल है, वहां पर बसना मुश्किल है। आप देखें लोग दो ही वजूहात से ये इंडिया पाकिस्तान से निकलते हैं, एक अमन और एक रिस्क, कि चलो कहीं जाएंगे कहीं जॉब्स हैं, यहाँ अमन से रहें, यहाँ पे इतनी बदअमनी है। तो ये अमन इतनी बड़ी नेमत है ना जिस जगह पे मिल जाए, इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नेमत मांगी। किसी जगह पे आप पुरसकून रह ही नहीं सकते, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, अगर वहां पे अमन नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन गोली मार दे, कौन डाके डालने आ जाए, कौन छीन ले गाड़ी, कौन गन पॉइंट पे क्या कर ले। तो जिस जगह पे अमन नहीं है वहां पे सुकून नहीं है। तो अमन एक शहर के लिए सबसे जरूरी चीज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सुबह उठे और तीन चीजें उसको, तीन नेमतें मिली हो, तो समझ लो उसको पूरी दुनिया की नेमतें मिल गई, अल्लाह ने सारी दुनिया इकट्ठी करके उसको दे दी। वो तीन नेमतें क्या हैं, सबसे पहले ये सेहत की नेमत, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नंबर टू,
हालत अमन, कि उसको कोई खौफ ना हो। अमन क्या चीज होती है? खौफ ना होना, इसको अमन कहते। इंसान खौफ ना हो और इत्मीनान हो, ये अमन है। क्या आपको ये नहीं है कि अब कोई बच्चा बाहर निकला तो अब क्या हो जाएगा, शौहर बाहर निकले हैं तो ये ना हो जाए, कुछ मसला हो। कई जगहें ऐसी हैं आपको पता है ना, कि जहां पे लोग हर वक्त इस खौफ के अंदर होते हैं, पता नहीं जो घर से गया इसने वापस भी आना है कि नहीं। किस वो जो बाहर गया उसको ये नहीं पता कि मेरे घर वाले सलामत भी होंगे, मैं घर पे आऊंगा कि नहीं। कहीं बम पड़ रहे हैं, कहीं अगवा हो रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है न। तो नंबर थ्री क्या है? उस दिन का खाना उसके पास हो, ये नहीं कि साल भर का खाना, सिर्फ उस दिन का खाना उसके पास है। ये तीन नेमते हैं जो इतनी बड़ी नेमते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मांगा था और अल्लाह ताला ने अता फरमाया उनकी इस दुआ की वजह से, कि देखें वो जगह आज तक अमन की है। इंसान तो इंसान, इंसान के तो उस जमाने से, जाहिलियत के जमाने से अभी इस्लाम भी नहीं आया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से लोग अपने दुश्मन को, अपने बाप के कातिल को भी देखते थे इस जगह पर, तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। ऐसी अमन की जगह है। तो इंसान परिंदों को भी आवाज नहीं डरा सकते, शिकार नहीं कर सकते, पौधे नहीं उखेड़ सकते, इतना अमन है। तो समझ लें कि सेफ जोन में आप आ गए। और वरजुक अहलहू, और ठीक है, रिस्क की दुआ मांगी, अमन की पहले दुआ मांगी उसके बाद, क्योंकि अमन होगा तो फिर रिस्क का भी है ना। अगर रिस्क हो भी अमन ना हो तो फिर तो इंसान को, जैसे मैं आपको कहा, कि फिर रिस्क के भी लाले पड़ जाते हैं कि क्या करना है ऐसे रिस्क को, कि जब इंसान की जान ही खतरे में रहे, हर वक्त दिल में ये खौफ रहे कि पता नहीं अब क्या हो जाता है। तो वरजुक अहलहू मिन समरात, और इसके रहने वालों को, इस जगह के, कौन सी, इस बलद के रहने वालों को, यानी मक्का के रहने वालों को समरात अता फरमा। समरात का मतलब सिर्फ फल नहीं है, बल्कि हर तरह की अजनास, गल्ला वगैरह, ये सब चीजें इसके अंदर आती। और आज तक अल्लाह ताला ने अता फरमाया हुआ, हालांकि वहां पे कोई चीज उगती नहीं है। देखिए हैरत की बात ही है, सिवाय मतलब के खजूर वगैरह के दरख्तों के आप कोई देख लेंगे, वरना तो वहां पे कुछ भी नहीं है। कौन से फ्रूट्स हैं वहां पे, और कौन से बागात हैं जो आपने कभी देखे हो, या खेत आपने कभी देखे हो, फिर भी अल्लाह ताला ने हर जमाने में यहाँ पे चीजों की, खाने पीने की बहुतात रही है, कभी रिस्क की कमी नहीं हुई। तो रिस्क को भी मांगा, और इससे हमें पता चलता है कि रिस्क मांगने में कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं इसके अंदर। अमल की बातें ये मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ आप लिखते जाएं। जब मैं आपको कहती ना इससे ये पता चला, तो इसका मतलब ये अमल की बात है। आप रिस्क की दुआ मांग सकते हैं। कोई लोग सोचते हैं ना कि नहीं नहीं हमें नहीं मांगनी चाहिए इस तरह, ये भी तो कितना बुरा लगेगा हम रिस्क मांगे अल्लाह ताला से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हिजरत करके गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए दुआ की थी कि अल्लाह, इसके मुद और सा, ये दो पैमाने होते हैं, यानी जैसे आप कहते हैं के जी या लीटर या इस तरह, तो इसके मुद और सा में बरकत दे, और इसके समरात में बरकत अता फरमा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रिस्क तो था लेकिन बरकत अता फरमा, बरकत की दुआ की थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चूंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो इसलिए दुआ की कि इनको रिस्क दे समरात का। तो इसलिए आप मांग सकते हैं ये दुआ, ये मांगनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है फकरो फाके से, कि ये भी कुफर तक बाज दफा पहुंचा देता है। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए उसको देना, अल्लाह अल्लाह पर ईमान लाए और आखरत पर ईमान लाए, अल्लाह उसको ये रिज़्क अता फरमाना। क्यों ये ऐसे क्यों कहा? इसलिए कि पहले सारी जुरियत के लिए दुआ मांग ली थी ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, जालिमों को नहीं ये पहुंचेगा, नाफरमानों को नहीं पहुंचेगा, काफरों को नहीं ये इनाम पहुंचेगा। तो उन्होंने सोचा, एक अदब होता है ना, जब पता चल गया है कि जी आवाज आ रही है जूम के, अच्छा, जब पता चल गया कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि मैं जालिमों को नहीं दूंगा, तो अब क्या, अब ये साथ ही दुआ में कह दिया कि हाँ अल्लाह, जो तेरे ऊपर ईमान रखते हैं और आखरत पे ईमान रखते हैं उनको ही देना। उन्होंने ये सोचा कि इसका मतलब इनके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, मुझे जो नाफरमान है, तो बाकी जो नेक नेक लोग हैं ये अल्लाह ताला उनको देना। अल्लाह ताला ने आगे से फरमाया, ये नहीं है कि ये रूल यहां पे नहीं चलता। काला फरमाया, वमन कफरा, जिसने कुफर किया ना, कुफर अल्लाह ताला को नहीं मानता, फउम्मतियुहू, तो मैं उसको भी फायदा दूंगा, उसको भी रिस्क दूंगा, कलीलन, थोड़ा सा, थोड़ा सा इसलिए कि दुनिया जो है वो है ही थोड़ी, यानी दुनिया में तो उसको भी मैं खिलाऊं पिलाऊंगा, उसको भी अता करूंगा। रिस्क के मामले में ये रूल नहीं है, ये समझा दिया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जब दीन का मामला आया, जब दीन में इमामत का मामला आया, तो फिर फरमाया नहीं जालिमों को नहीं दूंगा, लेकिन जब रिज्क का मामला आया तो फरमाया नहीं काफरों को भी दूंगा, काफिर को भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा रिज्क। इससे क्या पता चला, जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रिज्क उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत नहीं करता, दोनों को देता है। आप देखते नहीं कारून को भी कितना कुछ मिला, उसके तो खजाने ही इतने थे कि खजानों की चाबियां ऊंटों पे लाद के ले जाई जाती थी। फिरौन को कितना कुछ मिला, नमरूद को कितनी बड़ी बादशाहत मिली। तो अल्लाह ताला रिस्क ना, ये उसमें रूल नहीं है कि रिस्क पसंदीदा लोगों को मिले। हम तो देखते हैं अच्छा पता नहीं ये अल्लाह से कितना राजी होगा जो इसको इतना दिया गया, और वो खुद भी समझने शुरू हो जाता है हम अच्छे ही हैं जो हमें इतना मिला हुआ, अगर हम कुछ गलत करते होते हमें क्यों मिलता। ये तो है ही नहीं रूल ना, ये क्राइटेरिया ही नहीं कि आप नेक हैं तो आपको रिस्क ज्यादा मिलेगा, आप बुरे हैं तो आपको रिस्क नहीं मिलेगा। काफरों को भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं दूंगा उनको भी दुनिया का फायदा, बल्कि काफिर तो ज्यादा लग्जरीज में रह रहे हैं। तो कभी इससे धोखा ना खाएं। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान के आखिर में क्या फरमाया कि इससे कभी धोखा ना खाना, कि लोगों को अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह के नाफरमान है उनको अल्लाह ताला ने कितना दिया। ला यगुरन्नक तकल्लुबुल लदीन कफरू फिल बिलाद, को तो ही तुम्हें धोखे में ना डाल दे इनकी चलत फिरत दुनिया के अंदर, ये कितने इनके ऐश है, इनकी चमक दमक, ये तुम्हें धोखे में ना डाल दे कि पता नहीं अल्लाह के महबूब यही हैं और हमें इनको कॉपी करना चाहिए तभी हमारे पास भी इतना होगा। तो अल्लाह ताला उसको भी देता है हदीस में जिससे मोहब्बत रखता है और जिससे मोहब्बत नहीं रखता, लेकिन आगे सुने, लेकिन अल्लाह ताला दीन उसको ही देता है जिससे मोहब्बत करता है। अगर आपको दीन मिला हुआ ना, तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। दुनिया मिलने के ऊपर ये ना सोचे, दुनिया तो अल्लाह ताला ने काफिर को भी देनी है, यहां से पता चल गया, वह मन कफारा उसको भी मैं दूंगा। इस दुनिया का साजो सामान, इस दुनिया की लग्जरीज, मगर इमामत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी, आखरत में कामयाबी नहीं मिलेगी, दीन नहीं मिलेगा, हिदायत नहीं मिलेगी। ये नेमते अल्लाह ताला अपने ऐसे लोगों को नहीं देता। अल्लाह अकबर, क्यों काफरों को क्यों दी जाएगी? इसलिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं। हदीस में फरमाया ना, ये दुनिया का माल अल्लाह के नज़दीक है, सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत होती, मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं है। अगर इतनी भी होती तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट भी पानी ना देता, लेकिन इसका मतलब इतनी भी नहीं है, इतनी सी भी हैसियत नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला दे देता है। जैसे आप गार्बेज, आप ये थोड़ी कहेंगे मैं गार्बेज किसी को नहीं दूंगी, नहीं, ये बड़ा कीमती है मैंने नहीं देना तुम्हें, हम कहेंगे ये गार्बेज ही है उठा के फेंको, जिसको मर्जी दे दो। लेकिन फिर कलील है, लिए कलील क्यों कहा गया? इसलिए कि दुनिया सारी कलील है ना, दुनिया का रहना कितना छोटा है, जिसकी जिंदगी कितनी कलील है, उसमें अल्लाह ताला देगा। अब इसमें पूरी दुनिया भी मिल जाए ना किसी को, तो वो भी कलील है। दुनिया में अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह रहमान दुनिया वल आखरा, रहमान है वो दुनिया और आखरत में, दुनिया में सबको देता है आखरत में भी देगा, लेकिन रहीम सिर्फ मोमिनों के लिए आखरत में है। तो इसी वजह से जब जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे सूरह आराफ में है ना, थोड़ा सा पानी तो हमारे ऊपर डाल दो, थोड़ा हमें पानी दे दो, तो वो कहेंगे नहीं अल्लाह ताला ने इन नेमतों को हराम किया काफरों पे, आखरत में कुछ नहीं है इनके लिए। तो अल्लाह ताला ने रिज्क दुनिया में तो काफिर को भी देना है, जहां मोमिन के खेत पे बारिश बरसेगी काफिर के भी बरसेगी, मगर आखरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। और ये दुनिया का जो ये है ना, ये बहुत कलील है, इसके ऊपर इतना रीझने की जरूरत नहीं, कलील है ये, वैसे भी थोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रकत जो आप फजर की सुन्नतें जो दो रकत पढ़ लेते हो ना, दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो सोचिए क्या है दुनिया, कितनी मामूली है कि वो दो रकतें भी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने काफरों को बहुत कुछ दिया, और मोमिन देखें, अब सहाबा कराम, कई सहाबी ऐसे थे वो भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे, इतना फकर था। ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता था। तो ये जो दुनिया काफिर को मिल रही है, ये पता है कितनी बड़ी हसरत बन जाएगी। सूरह अहकाफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त जब इनको जहन्नुम के किनारे पे खड़ा किया जाएगा, तो उस वक्त इनसे कहा जाएगा, तुमने दुनिया में जितने मजे लूटने थे लूट लिए, अब यहां पे तुम्हारे लिए जिल्लत आमेज अजाब के सिवा और कुछ नहीं है। सोचें, 1 मिनट भी बिजली के बगैर हमसे रहा नहीं जाता, उसके बगैर हमसे कुरान पढ़ने को कह दे, नमाज पढ़ने को कह दे, कहते नहीं हमसे नहीं होता। तबूक में सहाबा जा रहे थे, उस वक्त इस कदर शदीद गर्मी थी, और 17 लोगों के लिए एक एक ऊंट था। उस वक्त मुनाफिकों ने कहा था, ला तनफिरू फिल हर, हाय गर्मी इतनी है, गर्मी में ना निकलो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कह दीजिए इनसे जहन्नम की आग ज्यादा गर्म है। ये दुनिया की गर्मी क्या चीज है जिसमें तुम कह रहे हो ना निकलो। जिनको दुनिया में बहुत गर्मी लगती है ना, वो ये समझ लें कि आखरत की गर्मी क्या होगी। जो कहते ना हमसे हिजाब नहीं लिया जाता, इतनी गर्मी में तुम कैसे पहनते हो। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, सोच लो फिर। अल्लाह ताला फरमाता है इनसे, इनको बता दो जहन्नम की आग तो बहुत ज्यादा शदीद है, इसे वो दुनिया की आग का 69 टाइम ज्यादा है, जो पत्थरों को भी पिघला दे वो आग कैसी होगी। तो दुनिया की अय्याशी को और दुनिया में लग्जरीज पाने को कामयाबी ना समझे। हजरत उमर के सामने जब अच्छे अच्छे खाने पेश किए जाते थे, तो सूरह अहकाफ की यही आयत तिलावत फरमाया करते थे कि कहीं उसके बाद फरमाते, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला वहां पे कह दे तुमने दुनिया की जिंदगी में मजे लूट लिए, अब वही था तुम्हारा अजर, अब यहां पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मुझे डर है कहीं मुझे ऐसा ना कहा जाए। फिर रो पड़ते थे, हालांकि उनका खाना क्या था कि बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा भी उनके खाने से पीछे हट जाते थे, सूखी रोटी नमक के साथ। अभी वो अमीरुल मोमिनीन थे, 24 लाख मुरब्बा मील का के हुक्मरान थे, अफ्रीका तक हुकूमत थी। मामूली बात नहीं है, हीरे जवाहरात मस्जिद नबी के सेहन में बखेर दिए जाते थे। फारिस के ये जो ये ईरान ये बड़ी सुपर पावर थी, इसको कॉन्कर किया था। तो दुनिया मिल जाए ना, इसको बड़ी चीज ना समझे, इसके ऊपर इसको कामयाबी ना जाने। मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी मिली आखरत मिलनी चाहिए, नहीं भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसका मिल जाना कामयाबी नहीं, इसका ना मिलना नाकामी नहीं। तो ये कलील है, वैसे भी आपको पूरी दुनिया भी मिल जाए तो फिर भी एक ही लिबास पहनोगे ना, एक ही खाना खा सकते हो ना एक वक्त में। कितना है भी आपके सामने 100 डिशेस रखी हो, सारी नहीं खा सकते, 100 जोड़े हो आपके पास, सारे नहीं पहन सकते, एक ही कमरे में सो सकते हो ना, महल जितने बराबर भी हो सारा नहीं यूज कर पाते। और खास तौर पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल होंगी, 60 to 70 years, बस इतने में कितना खा लोगे, कितना पी लोगे, कितना पहन लोगे। नूह अलैहि सलाम को कितनी उम्र मिली थी, 950 साल तो सिर्फ तबलीग की थी उन्होंने, 1000 साल होगी पता नहीं कितनी उम्र होगी उनकी, फिर भी जब उनसे पूछा गया कितना रहे, तो फरमाया ऐसे ही लगता है कि एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया। बस, तो हमारे जैसे लोगों को क्या लगेगा? बल तो उसी रूनल हयात दुनिया वाला आखरा तो खैर हुआ अब का, फिर भी तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखरत इसे बेहतर भी और बाकी रहने वाली भी। सूरह मुजम्मिल में नहीं फरमाया, यौमा यजअलुल विलदाना शीबा? वो तो इतना खतरनाक दिन है कि उसकी वहशत की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला हुक्म देगा आदम अलैहि सलाम को, आदम अपनी औलाद में से हर हजार में से 999 जहन्नुम के लिए अलग कर दो, वह कैफ तत्तकूना, तुम कैसे बचोगे? इन कफर तुम यौमा यजअलुल विलदाना शीबा, अगर तुम उस दिन का इनकार करते हो जिस दिन बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, कैसे बचोगे उस दिन? छोटा बच्चा बूढ़ा हो जाए तो दुनिया मिली भी है ना, तो उसे अपनी आखरत बना लें, आखरत के जन्नत के महल बनाएं, वहां के दरख्त बनाएं, वहां के बागात बनाएं, वहां के दर्जे अपने आगे से आगे बढ़ाएं, वहां की सल्तनत बढ़ा लें, अपनी बादशाहत बढ़ा लें वहां पे। लेकिन अगर सारी दुनिया पा के भी यहीं पे ही अपने ऊपर ही खर्च करते रहे और किसी की परवाह ना की, तो ये यहीं रह जाएगा। दुनिया मिल भी गई तो इम्तिहान है। अनलेस कोई आगे पीछे दाएं बाएं खर्च करता रहे, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब वो बचेगा। तो दो यतीमों को, दो मोहताजों को, दो मसाकीन का ख्याल करो, मस्जिदें बनाओ, मदारिस बनाओ, कुएं खुदवाओ, सदियों से जमीन पे अपनी निशानियां छोड़ो कि दुनिया में नहीं भी रहें तो मेरे निशान मौजूद रहे यहाँ पे। और जिसने अय्याशी करता रहा यहाँ पे और वहां के लिए कुछ ना किया, इस अय्याशी का एंड कुछ भी नहीं है फिर। सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर वो मजबूर किया जाएगा आग की तरफ, अजाब, आग के अजाब की तरफ मजबूर किया जाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं ना जाना चाहता होगा, तो घसीट के ले जाया जाएगा, फोर्स किया जाएगा उसको। जो इस दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ खुद चल के नहीं आता ना, उससे दूर भागता है, तो कयामत के दिन फिर मजबूर करके, अब कहाँ भागोगे? अब भी नहीं आना चाहता उसको लेके, तो आग की तरफ ले जाया जाएगा। आग की तरफ कौन जाना चाहता है? कोई भी नहीं, इसीलिए जबरदस्ती से लाया जाएगा। तो इस जिंदगी के अंदर ही आ जाओ अल्लाह ताला की तरफ, अभी तो कोई मजबूर नहीं कर रहा, अभी आपकी अपनी विल पे छोड़ा गया है, आज आप अपने आप को खींच के लेकर आए, क्योंकि खींचना पड़ता है, दिल तो करता ही नहीं, और काम धंधे इतने ज्यादा हैं, क्लास के लिए भी बैठते हैं तो खींच के लाना पड़ता है, वरना ये काम है, वो काम है, वो काम है, काम तो कभी भी खत्म नहीं होंगे। आज खींच के लाओगे तो कल बच जाओगे। नमाज के लिए भी खींच के लाना पड़ता है, कुरान के लिए खींच के लाना पड़ता है, किसी नेकी के काम के लिए खुद को मजबूर करके, नहीं मैंने करना है ये, खुद से कुछ को खींच के लाएंगे तो बच जाएंगे उस दिन की खींचे जाने से। अल्लाह हू अकबर। तो काफिर तो दुनिया में खूब मजे कर ही रहे हैं, इसलिए कि उनका तो ईमान ही नहीं आखरत पर, मगर तुम उनको देख के, तुम्हारी राल ना टपके, तुम उनको देख के आहें ना भरो। तुम्हें अगर जन्नत पानी है तो तुम्हें आज अल्लाह की तरफ आना है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो बचा लिया गया आग से और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। देखिए अब आप मजहूल वगैरह पढ़ रहे हैं ना, कर दिया गया, बचा लिया गया, वो खुद नहीं बच सकता, अल्लाह ने बचा लिया उसको, दाखिल कर दिया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, फिर कामयाबी है, फिर उसके बाद कोई नाकामी नहीं, वो है कामयाबी। बाकी इस दुनिया में चंद लुकमे भी मिल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा करते हैं, जीने के लिए इतना ही काफी, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अमल हयात तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है, सिवाय धोखे के कुछ नहीं, इंसान इसी धोखे में पड़ा रहता है। आज नहीं कल, कल कल नमाज शुरू करूंगी, अगले रमजान में रोजे रखेंगे, अब ख्वाहिशात ऐसी हैं खत्म ही नहीं हो रही, शैतान धोखे में रखता है, कल कर लेना, कल कर लेना, कल कर लेना, ये हो जाए तो फिर कर लेंगे, फिर कुरान की तरफ आ जाएंगे, फिर मैं ये कर लूंगी, फिर मैं वो कर लूंगी, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, देख ले, वो प्लानिंग्स वाले सारे यही थे, जमीन के नीचे चले गए। इनकी भी बड़ी प्लानिंग्स थी, ये भी कई लोग इनमें थे जो कहते थे कल कर लेंगे। वो कल कभी आया ही नहीं और वो जमीन के नीचे चले गए। वो अभी सलमा सीर बड़ी कितनी बुरी लौटने की जगह है, जिसने अपने लिए इस जगह को चूज किया। सोचो कि वो कितनी बुरी जगह का अपने लिए सामान कर रहा है।